उसने नैना की ओर देखा और ठंडे खतरनाक स्वर में बोला, क्या सोच रही हो? एक काम करो, टेबल पर से चाकू उठाओ और अपने मां बाप की गर्दन काट दो। जैसे ही राजवीर ने यह कहा, नैना ने बिना एक पल गंवाए तुरंत चाकू उठा लिया था। ये देखकर उसके भाई बहन उसे रोकने के लिए दौड़ पड़े और चिल्लाते हुए बोले, नैना तुम ऐसा नहीं कर सकती, होश में आओ, छोड़ दो। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे नैना के अंदर कोई अजीब सी ताकत आ गई हो। उसने अपने भाइयों को जोर से धक्का दे दिया और बिना एक पल की देरी किए अपने ही मां बाप का गला काट दिया था। ये भयानक दृश्य देखकर पूरा परिवार चीखने चिल्लाने लगा। हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी, सभी रोने लगे थे, लेकिन नैना के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न आंसू न पछतावा, बस एक खालीपन। तभी राजवीर आगे बढ़ा और ठंडे स्वर में बोला, अच्छा अब एक काम करो, तुम्हारे मां बाप मर चुके हैं, इस पर जोर जोर से हंसो। और जैसे ही उसने कहा, नैना जोर जोर से हंसने लगी। वो पूरी तरह से राजवीर के वश में थी। उधर ड्राइवर मनोज जी ये सब देखकर पूरी तरह डर चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत करके छुपते छुपाते पुलिस को फोन कर दिया। इधर राजवीर को सबको तड़पता देखकर अजीब सी खुशी मिल रही थी। उसने फिर कहा, हंसना बंद करो और अब एक एक करके इस घर में मौजूद हर इंसान का गला काट दो, छोटे से लेकर बड़े तक, किसी को मत छोड़ना। ये सुनते ही नैना जैसे पूरी तरह बेकाबू हो गई। उसने एक एक करके जो भी सामने आया उस पर चाकू से हमला करना शुरू कर दिया। परिवार के लोग अपनी जान बचाने की कोशिश करते रहे, उसके भाई उसे रोकने की कोशिश करते रहे, बच्चे डर के मारे चीखते रहे, लेकिन नैना किसी को नहीं छोड़ रही थी। कुछ ही देर में 16-17 लोगों का पूरा परिवार खत्म हो चुका था। हर तरफ खून ही खून था। नैना का चेहरा, उसके कपड़े सब खून से सने हुए थे। और ये सब देखकर राजवीर जोर जोर से हंस रहा था। उसका वो पागलपन मनोज जी ने अपनी आंखों से देखा था। डर के मारे वो कहीं छुप गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर राजवीर ने उन्हें देख लिया तो उनकी भी जान जा सकती है। उधर राजवीर ने मुस्कुराते हुए नैना को देखा और उसके पास जाकर उसके खून से सने चेहरे को देखा और बोला, वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। ये बोलकर वो हल्का सा मुस्कुराया और फिर बोला था, जब तक यहां पुलिस नहीं आ जाती तब तक हंसते रहो, याद रखना तुम्हारी हंसी बिल्कुल भी कम नहीं होनी चाहिए। ये बोलकर राजवीर मुस्कुराया, टिश्यू पेपर से अपने हाथ पर लगा खून साफ किया और वहां से बाहर चला गया। वहीं पर मनोज जी का चेहरा पूरी तरह से पसीने से लथपथ हो चुका था। आज उन्होंने अपनी जिंदगी में एक बेहद भयानक मंजर देखा था। जो लड़की कभी माथुर परिवार की जान हुआ करती थी, आज वही सबकी जान ले चुकी थी। कोई भी उसके इस सनकी और पागलपन भरे रूप से बच नहीं पाया था। राजवीर ने पूरी तरह से उस पर वशीकरण करके उसके पूरे परिवार का सत्यानाश कर डाला था। थोड़ी ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई, लेकिन तब तक राजवीर वहां से जा चुका था। जाते जाते उसने नैना को बस हंसते रहने का आदेश दिया था और नैना वही कर रही थी। पुलिस ने जैसे ही अंदर का मंजर देखा, उनके होश उड़ गए। पूरे परिवार की लाशों को देखकर समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा अंग किस परिवार के सदस्य का है। सबका बहुत ही ज्यादा बुरा हाल था। ऐसी हालत तो पुलिस वालों ने कभी भी नहीं देखी थी। ये मंजर बेहद डरावना और खतरनाक लग रहा था और सबकी हालत इस वक्त काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। नैना के करीब जाने से भी पुलिस वाले डर रहे थे, लेकिन उन्हें अपनी ड्यूटी हर हाल में निभानी थी। उन्होंने दूर से ही नैना को गन पॉइंट पर ले लिया था। पुलिस वालों को देखते ही नैना पूरी तरह से शांत हो गई थी। उसने हंसना बंद कर दिया था और राजवीर ने पहले ही कहा था कि जो कुछ भी पुलिस वाले कहें उसे सिर्फ वही करना है। पुलिस वालों ने जैसे ही कहा कि अपने आप को सरेंडर करो, नैना तुरंत घुटनों के बल बैठ गई और अपने दोनों हाथों को अपने सिर पर रख लिया। इस वक्त वो बेहद डरावनी दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में उसके अपने परिवार की मौत को लेकर किसी भी तरह का दर्द, पछतावा या डर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ एक अजीब सा खालीपन उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। पुलिस ने तुरंत नैना को गिरफ्तार कर लिया अपने ही परिवार की हत्या के जुर्म में। मनोज जी सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं बोल पाए। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि नैना ने ये सब अपनी मर्जी से नहीं किया, बल्कि राजवीर ने उससे ये सब करवाया था, लेकिन डर के कारण वो चुप रहे। नैना जब पागलों की तरह हंस रही थी, पुलिस को लगा कि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए उसे सीधे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। और जिस अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया, उसका इंचार्ज कोई और नहीं बल्कि खुद राजवीर जिंदल था। उसे पहले से ही अंदाजा था कि केस को मेंटल केस माना जाएगा और नैना को उसी के अस्पताल में लाया जाएगा, इसलिए उसने पहले से ही सारी तैयारी कर रखी थी। नैना के लिए एक खास कमरा तैयार किया गया था जहां हर तरह की सुविधा मौजूद थी। कुछ देर बाद राजवीर उसके पास पहुंचा। वो उसे खून से सने कपड़ों में देखकर अजीब सी खुशी महसूस कर रहा था। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मजा आ गया, ताजा खून की खुशबू ही कुछ और होती है। फिर उसने नैना को गौर से देखते हुए कहा, लेकिन ये खून तुम्हारे शरीर पर अच्छा नहीं लग रहा। तुम मेरी पसंदीदा हो और मेरी पसंदीदा चीज पर किसी और का निशान मुझे पसंद नहीं। उसने नैना को बाथरूम की ओर इशारा करते हुए कहा, जाओ अपने शरीर से एक एक खून का निशान साफ कर लो। नैना चुपचाप अंदर गई और खुद को पूरी तरह साफ करके बाहर आई। उसने राजवीर के दिए हुए कपड़े पहन लिए थे। राजवीर उसे चारों तरफ से घूरते हुए देखने लगा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि थी। वो धीमे स्वर में बोला, बहुत खूबसूरत लग रही हो। फिर वो थोड़ा करीब आया और बोला, तुमने कभी मुझे अपने पास आने नहीं दिया, लेकिन आज। राजवीर नैना के बेहद करीब आ गया था। उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन और जीत का घमंड साफ दिखाई दे रहा था। वो धीमे स्वर में बोला, देखा, आखिरकार तुम वहीं आ गई जहां मैं तुम्हें लाना चाहता था। तुम हमेशा से मेरी थी नैना, बस तुम्हें यह समझने में थोड़ा वक्त लगा। नैना उसके सामने बिल्कुल शांत खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, ना गुस्सा, ना डर, ना ही कोई सवाल, जैसे उसकी अपनी पहचान कहीं खो चुकी हो। राजवीर उसके चारों तरफ घूमते हुए उसे ध्यान से देखने लगा, जैसे वो किसी इंसान को नहीं बल्कि अपनी जीत को देख रहा हो। तुमने मुझे कभी अपने करीब आने नहीं दिया, वो मुस्कुराया, लेकिन आज तुम खुद मेरे सामने खड़ी हो बिना किसी विरोध के। उसने आगे बढ़कर नैना के चेहरे के पास अपना हाथ लाया, लेकिन इस बार उसके स्पर्श में पहले जैसी क्रूरता नहीं थी बल्कि एक अजीब सा जुनून था जो उसे और भी खतरनाक बना रहा था। अब तुम सिर्फ वही करोगी जो मैं कहूंगा, उसने धीरे से कहा। तभी अचानक नैना की उंगलियां हल्की सी कांपी। राजवीर की नजर उस पर पड़ी, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। अब आराम करो, उसने आदेश दिया, तुम्हें बहुत लंबा सफर तय करना है मेरे साथ। नैना चुपचाप बिस्तर की ओर बढ़ गई और बैठ गई, लेकिन उसी पल उसकी आंखों में एक पल के लिए हल्की सी नमी चमकी, जैसे उसके अंदर कहीं बहुत गहराई में अभी भी कुछ जिंदा हो, कुछ जो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। राजवीर ने शायद इसे नहीं देखा, लेकिन यही वो चिंगारी थी जो आगे चलकर एक तूफान बन सकती थी। और मुझे प्यार करो, राजवीर के ये शब्द सुनते ही नैना ने पागलों की तरह उसके कपड़े उसके शरीर से अलग कर दिए थे और खुद आगे बढ़कर उसे बाहों में भर लिया था। वो पूरी तरह उसके वश में थी, बिना किसी सोच, बिना किसी एहसास के, बस राजवीर के इशारों पर चल रही थी। राजवीर उसकी हर हरकत को देखकर भीतर ही भीतर मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर एक जीत का अहंकार साफ झलक रहा था।
वहीं दूसरी तरफ अरमान पूरी तरह से सन रह गया था। उसकी सांसें जैसे थम गई थी। कुछ देर पहले तक वहां मौजूद आकाश, सुमित, अविलाश और बाकी लोग इस कहानी को बस एक घटना की तरह सुन रहे थे, लेकिन जैसे जैसे राजवीर ने सच उगलना शुरू किया, सबके चेहरे बदलने लगे। अब हर किसी के दिल में नैना के लिए दर्द और राजवीर के लिए गुस्सा एक साथ उमड़ रहा था। राजवीर ने मुस्कुराते हुए आगे कहना शुरू किया, जानते हो उसके बाद क्या हुआ? तभी सम्राट तुरंत बीच में कूद पड़ा और उत्साह से बोला, वाह गुरुजी, मजा आ गया। आखिर ऐसा कौन सा टॉनिक बनाया था आपने कि नैना माथुर पूरी तरह आपके वश में हो गई? और आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या ऐसा कोई टॉनिक आस्था के लिए भी है? जैसे ही सम्राट ने ये घटिया बातें कही, अरमान और उसके भाई की आंखों में खून उतर आया। दोनों ने उसे ऐसी नजरों से देखा मानो अभी उसका गला दबा देंगे। अरमान का दिल किया कि वो वहीं जाकर सम्राट की जुबान खींच ले, लेकिन उसी पल उसे लगा जैसे कोई उसे रोक रहा हो, जैसे अभी सही समय नहीं है और उसे अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। उधर सम्राट अपनी बकवास जारी रखते हुए बोला, पूरी रात नैना ने मुझे, मतलब आपको, इतना प्यार किया होगा कि, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही राजवीर ने उसे घूर कर देखा और वो तुरंत चुप हो गया। राजवीर ने फिर ठंडी आवाज में कहना शुरू किया, उस रात के बाद मैंने तय कर लिया था कि अब इस औरत पर किसी और की परछाई भी नहीं पड़ेगी, ये सिर्फ मेरी रहेगी, सिर्फ मेरी। वो कुछ पल रुका फिर बोला, अगले दिन केस कोर्ट में जाना था, मैंने उसे मेंटली अनस्टेबल घोषित करने की कोशिश की, लेकिन मामला पलट गया। उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। वृद्धा आश्रम और अनाथ आश्रम के लोगों ने कोर्ट में याचिका डाल दी। उन्होंने कहा कि नैना बेगुनाह है, असली गुनहगार कोई और है, और शक सीधा मुझ पर आया। कमरे में सन्नाटा छा गया। राजवीर ने दांत भींचते हुए कहा, कुछ मामूली लोगों की इतनी हिम्मत, जब उसका अपना परिवार नहीं बचा तो ये लोग कैसे मेरे खिलाफ खड़े हो गए? वो आगे बोला, लेकिन उन्होंने गवाही दी और उसी के आधार पर नैना को बाइज्जत बरी कर दिया गया। आखिरकार नैना माथुर की छवि पूरी तरह से पॉजिटिव थी, लाखों लोग उसका समर्थन कर रहे थे, कितने ही लोगों को वो अकेली पाल रही थी और सभी की चहेती थी। पुलिस को असली कातिल खोजने के लिए कहा गया। अरमान की मुठ्ठियां भींज गई थीं। राजवीर की आवाज़ धीमी हो गई, उस वक्त मुझे लगा मैं उसे खो दूंगा, मैं उसके बिना नहीं रह सकता था। मैंने हर कोशिश की उसे वापस अपने कंट्रोल में लाने की, लेकिन वो रुक गया। कोर्ट के आदेश के बाद उसे मानसिक इलाज के लिए एक बड़े अस्पताल में भेज दिया गया और मैं उसके पास नहीं जा पाया। उसकी आंखों में पहली बार बेचैनी दिखी। मेरे बनाए उस सिस्टम का असर सिर्फ तब तक था जब तक मेरी आवाज़ उसके कानों तक पहुंचती रहे। 3 दिन, बस 3 दिन। कमरे में बैठे हर इंसान की सांसें थम गई थीं। राजवीर ने धीरे से कहा, और उन 3 दिनों तक मैं उससे दूर रहा, मेरी कोई आवाज़, कोई कमांड उसके पास नहीं पहुंची। उसने सिर उठाकर सबकी ओर देखा, और 3रे दिन नैना मेरे वश से बाहर आ गई। होश में आने के बाद कैसे रिएक्ट करेगी नैना माथुर, जानने के लिए बने रहिए दोस्तों और सुनते रहिए पॉकेट FM पर तेरे इश्क में।